Om Agyanakimirandharsya ऐसा श्लोक दूसरा श्लोक का पाठ करेंगे साक्षास्त्री प्रेरिता देवै
अद्भुत
अदृष्टा कभी न देखा गया, अश्रुता कभी न सुना गया, पूर्वत्वात् पहले कभी पहले सा वह लक्ष्मी न नहीं उपे आया भगवान के समक्ष गई, शंकिता अत्यंत भयभीत। अनुवाद और तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद पहले पढ़ता हूँ। वहां पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाएं, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतएव वे उसके पास नहीं जा सकीं। सर अतएव वे उनके पास नहीं जा सकीं। तात्पर्य भगवान के असंख्य शारीरिक रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ये सारे रूप वैकुंठ लोक में रहते हैं तो भी लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी भगवान के इस अद्वितीय रूप को नहीं जान पाई। इस संबंध में श्रीमध्वाचार्य ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक सुनाते हैं। अदृष्ट्वात् पूर्वत्वात् अन्य साधारण जन ही नृसिंहम संकितेव श्रीलोक मोहायनो ययो प्रहलादे चैव वात्सल्य दर्शनाय हरेरपि ज्ञात्वा मनस तथा ब्रह्मा प्रहलादं प्रेषयत् तदा एकत्रय कस्य वात्सल्यं विशेषाद दर्शयत् हरि अवरस्यापि मोहाय कर्मणैवापि वत्सलः। दूसरे शब्दों में सामान्य व्यक्ति के लिए नृसिंह देव के रूप में भगवान अदृश्य तथा अद्भुत होते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए भगवान का ऐसा भयावह रूप किंचिदपि असामान्य नहीं होता। भगवत कृपा से ही भक्त समझ सकता है कि भगवान जिस रूप में चाहें उसमें वे आसानी से प्रकट हो सकते हैं। अतः भक्त कभी भी ऐसे रूप से भयभीत नहीं होता, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज पर विशेष कृपा की थी, अतः वे शांत तथा निर्भय बने रहे। यद्यपि सारे देवतागण यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान नृसिंह देव से भयभीत थी, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति भागवतम 6:17। न केवल प्रहलाद महाराज जैसा नारायण भक्त जीवन की भयावह दशा में दशा से निर्भीक बना रहता है, अपितु भक्त के भय को दूर करने के लिए भगवान के प्रकट होने पर भी भक्त कभी सभी परिस्थितियों में अपनी निर्भीक स्थिति बनाए रखता है। इस श्लोक में नारद जी वर्णन करते हैं, नारद जी के द्वारा ही उक्ति है श्लोक। साक्षात स्त्री प्रेषिता देव ही विश्वातम मदद्भुतम। नारद जी हम बताते हैं कि पहले का अध्याय में आप जान चुके हैं, नृसिंहदेव भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद वे असुर का हिरण्यकशिपु का वध किया। वध के उपरांत वहां पर सभी देवता उपस्थित हुए थे, आकाश मार्ग से देख रहे थे, आ गए और सभी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, शिव जी, अन्य भी जितने ऋषि मुनि समस्या थी कि भगवान को शांत कैसे किया जाए।
क्रोधित दिख रहे थे निश्चिंत।
तो एक काम तो क्रोध का हो चुका था, हिरण्यकशिपु का वध उन्होंने कर दिया था, यह तो अच्छी बात थी। लेकिन देवताओं को चाहे सब लोगों की इस बात की आशंका थी कि भगवान शांत नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं करे से क्रोध दूसरों को प्रकट और को नष्ट कर और लोगों को मार दे। क्रोध शांत नहीं होता पूरे सृष्टि ही समाप्त कर दे, देवताओं को मार दे, ऋषियों को मार दे, क्रोध में कुछ तब यह समस्या थी ब्रह्मा जी के साथ। तो ब्रह्मा जी एक युक्ति सोचे कि भगवान के इस क्रोध को शांत किया जाए, तो उन्होंने उसके लिए लक्ष्मी जी को चयन किया। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी भी वहां आ गए थे, जब भगवान प्रकट हो गए थे तो लक्ष्मी जी भी वहां प्रकट हो गए थे, सभी देवता तो थे लक्ष्मी जी। तो साक्षात श्री प्रेषिता देव देवताओं ने, जिसमें ब्रह्मा जी मुख्य व्यक्ति थे, शिव जी मुख्य व्यक्ति थे, तो देवताओं सभी देवताओं ने प्रार्थना किया लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी आप भगवान को शांत कीजिए। साक्षात श्री प्रेषिता देव देवताओं द्वारा लक्ष्मी जी को भेजा गया, साक्षात लक्ष्मी जी को भेजा गया। लक्ष्मी जी थोड़ा नजदीक गई, इस प्रस्ताव को लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया, और लक्ष्मी जी जानती ही थी कि भगवान है, उन्हीं के पति हैं। तो एक बार लक्ष्मी जी ने साहस बटोरा, भय तो लग रहा था लेकिन साहस बटोरा की इच्छा, लेकिन नजदीक आए तो यहाँ पर लिखा हुआ कि विश्वा तम महत अद्भुतम, भगवान के नरसिंह देव के उस महत मने विशाल विराट बड़ा और अद्भुत मने विचित्र। तो भगवान के विचित्र रूप को, भगवान के बड़े रूप को लक्ष्मी ने देखा, तो इस रूप की विशेषता बताई जाती है अदृष्ट, ऐसा रूप कभी देखा नहीं गया था कभी भी पास्ट टेंस में, पहले ऐसा रूप किसी ने देखा नहीं था। फिर देखा नहीं बोले हो सकता पढ़ा हो कि भगवान का रूप ऐसा होता है, हम लोगों ने आप लोगों ने नरसिंह भगवान को देखा नहीं है, नहीं देखे ना कोई, देखे हैं नरसिंह भगवान को, फोटो नहीं हम पाते हैं, फोटो तो आपने देखा होगा। तो हम लोग देखे नहीं लेकिन सुने हैं हम लोग, है ना कि, लेकिन उस समय जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो देखा तो कोई था नहीं लेकिन सुना भी नहीं था किसी ने, दूसरे न सुने हो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लक्ष्मी जी भी नहीं सुना था कि ऐसा विरूप होता है। तो अदृष्टा और अश्रुत न तो देखा गया था और न तो सुना गया था पहले। तो सा न उपाय, लक्ष्मी जी नजदीक नहीं गई, लक्ष्मी जी को दो काम करना था, नजदीक जाना था और जाकर भगवान से प्रार्थना कर दी कि उनको शांत करना था। लक्ष्मी जी के विषय में यहाँ नारद जी कहा कहते हैं कि न उपे आया, वो नजदीक नहीं आई, नजदीक नहीं आई, दूर ही खड़ी रही गई। क्यों दूर खड़ी रही? शंकित थी, शंकित शब्द शंका था, यह लक्ष्मी जी फिगर आउट नहीं कर रही थी कि हो सकता है कि भगवान गले से लगा लें, इंप्रेस करें आलिंगन के लक्ष्मी जी का, और लेकिन यह बात अभी आती थी कि हो सकता है सर एक तमाशा चला देंगे तो इतना कि संकिता समझते है ना, सब हो रहा था। तो लक्ष्मी जी लौट इस श्लोक में यही बातें कही कि देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा कि आप माता जी भगवान को आपके पति हैं उनको शांत कीजिए। तो लक्ष्मी जी साहस बटोरी, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, आई थोड़ा सा लेकिन नजदीक नहीं गई, क्योंकि उनको बहुत शक था, भय भय लग रहा था, इसलिए वो
वहां नहीं गए। रूप के विषय में दो बातें बताई गई कि ऐसे रूप को न तो कहीं सुन देखा गया था कभी और न तो सुना गया था। रूपाधि इस तात्पर्य में इसी बात की अदृष्ट अश्रुत कभी देखा नहीं गया था कभी सुना नहीं गया था इसी की तात्पर्य में इसी बात को प्रकट किया। हम लोग जानते हैं भगवान के अनंत अनंत रूप है और अनंत अनंत वैकुंठ है, तो उन वैकुंठों में भगवान रहते हैं इसी रूप से, नृसिंह रूप से, किसी में वामन रूप से, किसी में विष्णु रूप से निवास करते हैं। और जहां जहां भगवान रहते हैं तो उनके पार्षद भी रहते हैं। यदि किसी वैकुंठ लोक में भगवान नृसिंह इसी रूप में, जैसा हमने सुना सुना गया है, जैसा प्रकट हुए थे, तो उसी रूप में रहते हैं, तो वहां सभी पार्षद रहते हैं, सभी भक्त रहते हैं, लक्ष्मी जी रहती हैं, गरुण जी वहां जरूर रहते हैं, नंद सुनंद पार्षद भी वहां रहते हैं। तो अब यह कैसे कोई कहा जा कोई कह सकता है कि उसको कभी देखा नहीं गया था? लक्ष्मी जी तो देखी थी, देखी होंगी ना, वैकुंठ में लक्ष्मी तो साथ रहती हैं। आप लोग कभी कोई प्रार्थना पढ़ते हैं, लक्ष्मी नृसिंह भगवान के नित्य रूप है, वहां पर एक धाम है, अनंत एक ही वैकुंठ नहीं है, कहीं चतुर्भुज रूप से विष्णु रूप से भगवान रहते हैं एक वैकुंठ में, दूसरे वैकुंठ में वामन देव के रूप में भगवान रहते हैं, दूसरे में नृसिंह देव के रूप में रहते हैं। तो जो जो भगवान का रूप है वो प्रकट होता है, मतलब वहां वैकुंठ से भगवान वह रूप प्रकट कर देते हैं। यह कहा जा रहा है इस श्लोक में, स्पष्ट नारद जी कहते हैं अदृष्ट अश्रुत, न तो इस रूप को देखा गया था और न तो सुना गया। यह कैसे संभव नहीं है ना, दूसरे भले न सुने हो न देखे हो, लक्ष्मी जी तो सुनी हुई देखी साथ रहती हैं नृसिंह देव के साथ। तो प्रभुपाद जी एक बात इसमें कहते हैं, भगवान की अनंत अनंत शक्तियां होती हैं, तो एक शक्ति लीला शक्ति है। जब भगवान विशेषकर भौम लीला करते हैं, पृथ्वी पर भगवान लीला करते हैं, तो उस लीला के संपादन के लिए भगवान की एक शक्ति है जिसको लीला शक्ति कहते हैं। तो लीला शक्ति का यह प्रभाव होता है कि भगवान भी अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और भक्त भी भूल जाते हैं। नहीं तो भगवान अपने ऐश्वर्य को बनाए रखेंगे और इसके बाद भक्त भी उसको जानेंगे तो लीला हो नहीं सकती है। जैसे आप लोग उदाहरण जानते होंगे, आप कार्तिक महीने में इस लीला को पढ़े होंगे, सुने होंगे, माँ यशोदा ने कृष्ण को उपखल में बांध दिया था। तो जब बांध माता जी पकड़ रही थी कृष्ण को, तो कृष्ण रो रहे थे, भयभीत थे, सुने है ना, भगवान रो रहे थे, भयभीत थे। तो प्रश्न उठता है कि सचमुच भगवान भयभीत थे कि ऐसे भयभीत होने का नाटक करते थे? भगवान को भय नहीं था ना। तो यह प्रश्न उठता है, भगवान सचमुच भयभीत थे कि ऐसे ही जैसे नाटक में ड्रामा में लोग रोते हैं भय का आचरण को ऐसा कर रहे थे? क्या आप लोग सोचते हैं सर, सचमुच भगवान भयभीत थे कि ऐसे ही जैसे ड्रामा में होता है ना, लोग नाटक करते हैं तो राजा कोई बनता है तो चाहे तो रोने लगता है कुछ, तो उस समय भगवान एक रोने का नाटक कर रहे थे कि सचमुच रो रहे थे? यदि सचमुच वो कहते हैं कि जो नाटक कर रहे थे तो लीला के इसमें तो कोई, और माँ यशोदा क्या कर रही थी, वो नाटक कर रही थी कि मैं मार रही हूँ, वो भी तो नहीं कर रही थी माँ यशोदा सच। तो भगवान की एक लीला शक्ति है कि भगवान अपने ऐश्वर्य को अपने भक्त भूल जाते हैं, भगवान भी भूल जाते हैं और भक्त भूले ही रहते हैं। भक्तों के मन में कभी भी यह भावना नहीं आती है, विशेषकर जो माधुर्य भगवान की लीला होती है कि भगवान भगवान भी अपने को भगवान नहीं मानते हैं और भक्त भी भगवान को भक्त नहीं, तब यह लीला का बढ़िया से आस्वादन होता है। तो भगवान की लीला शक्ति ने ऐसा किया कि लक्ष्मी जी को ऐसा लगा कि इस रूप को मैंने कभी नहीं देखा, जानते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे, भगवान माँ यशोदा को अपने मुंह में एक बार पूरा विश्व दिखा देते, ब्रह्मांड दिखा देते, उसे दो बार दिखा देते। तो यह इनक कारण था कि माँ यशोदा को विश्वास कर लेना चाहिए था कि लड़का सामान्य लड़का नहीं, भगवान है, जिसके अंदर सारा विश्व, सारा नक्षत्र, सारे तारे, आकाश, नक्षत्र, पहाड़, पर्वत, नदियां, देख अंदर छोटे से मुंह में दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद और भी लीला हुई थी, भगवान ने 7 दिन तक गिरिरा जी गोवर्धन को धारण कर, 7 वर्ष के थे तब, 7 वर्ष का उम्र था, पूरा पर्वत उठाकर ऐसे एकदम छोटी सी उंगली को धारण कर लेते, पूरा अब तो विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान है। तो भगवान ने एक तरह से अपनी पूरा भगवत्ता प्रदर्शित किया, लेकिन फिर भी भक्तों को कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान है। यह कैसे होता है, उसको लीला शक्ति, प्रभुपाद यहाँ उसे को लीला शक्ति कहते हैं। भगवान की जो लीला शक्ति है, लीला शक्ति के प्रभाव से भगवान भी अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। भगवान रो रहे थे तो सचमुच रो रहे थे, भय लग रहा था कि माँ हमको, मैंने अपराध किया है, मैंने इसका मिट्टी का पात्र फोड़ दिया है, दधी नष्ट हो गया, हमको मारेगी। तो मारने से जैसे बच्चे सचमुच रोते हैं, तो वैसे भगवान सचमुच रो रहे थे। यह लीला शक्ति का प्रभाव है। यहाँ पर भी लक्ष्मी जी जैसी भगवान की अंतरंग है, नित्य भगवान के साथ ही रहती है, तो उसको क्यों भय लग रहा था? भय का लक्ष्मी नाटक नहीं कर रही थी कि मैंने कि कहते बाह्य बहाना कर रही थी हमको भय लगा, शत्रुघ्न को भय लगा, शक शक हो रही थी। तो वहां पर वो नहीं गई। तो वहां कौशिला प्रभुपाद जी यहाँ पर एक ब्रह्मांड पुराण से मध्वाचार्य कि लक्ष्मी जी भगवान के पास नहीं गई, इस लीला में क्या रहस्य था, क्या भगवान दिखाना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? तो यहाँ पर इसमें जो मध्वाचार्य कोट करते हैं संस्कृत का श्लोक, ये ब्रह्मांड पुराण है, भगवान यह बताना चाहते थे कि प्रहलाद के प्रति भगवान का विशेष वात्सल्य भाव है, भगवान सबसे श्रेष्ठ भक्त है। इसे आप लोग पढ़ेंगे, जब लक्ष्मी जी फेलुअर हो गई तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज वहां गए, प्रहलाद महाराज को भय भी नहीं लगा, एकदम निर्भीक होकर भगवान के पास चले गए और भगवान का क्रोध भी शांत हो गया। तो लक्ष्मी जी से भी प्रहलाद महाराज का वैशिष्ट दिखाने के लिए, लक्ष्मी जी भी भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, अतरंग भक्त हैं भगवान के, लेकिन भगवान यह दिखाना चाहते, प्रहलाद महाराज के महत्व को बताना चाहते थे, प्रहलाद महाराज की भक्ति को विशिष्ट रूप से करना चाहते थे। इसीलिए भगवान यह चाहते थे कि लीला शक्ति में, भगवान की लीला में जो सहायक होती है, लक्ष्मी जी भी डर लगने लगा, लक्ष्मी सचमुच डर गई थी, भय लग रहा था भगवान हमको मार दे, तो लक्ष्मी जी को स्वयं भय लगा था, इसे लक्ष्मी जी वहां नहीं गई। तो इस तात्पर्य में दोनों ही बातें, प्रहलाद महाराज की भक्ति को, भक्ति के उत्कृष्ट को, वो श्रेष्ठ भक्त हैं, और भगवान का उनके प्रति विशेष वात्सल्य भाव, किसी अन्य भक्तों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ वात्सल्य भाव उस लीला में भगवान का, भगवान नृसिंह देव का प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज के प्रति है। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज की भक्ति की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए यह लीला हुई, लक्ष्मी जी वहां नहीं जाए, लक्ष्मी वहां से भाग गए। तो वहां पर प्रभुपाद में कहते हैं, एक बात आई है भागवतम में ही कि भगवान के भक्त किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं है, उनको भय नहीं लगता है। जिस भी पर भगवान के जो उच्चतर भक्त है, उच्च कोटि के भक्त होते हैं, तो वहाँ उनको भय नहीं लगता है। ऐसे भगवत गीता आप लोग पढ़े हैं तो भगवान जहाँ क्या कहते हैं दैवी गुण का वर्णन करते हैं, दैवी गुण का वर्णन, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, भक्त के गुणों का वर्णन करते, दैवी गुण उसमें होता है, आसुरी गुण का वर्णन एक अध्याय में, सोलह अध्याय में है ना, तो उसमें भगवान कहते हैं भक्तों में एक गुण होता है, अनेक गुणों का नाम दिया गया है, तो उसमें एक गुण जहाँ शुरू है अभयम, अभय मतलब भय नहीं लगता है। प्रहलाद महाराज का उम्र कोई ज्यादा नहीं था, 5-6 वर्ष के उम्र के थे, सभी देवता भयभीत थे, शिव जी साहस नहीं कर सके, वो रुद्र के अवतार ही क्रोध के अधिष्ठात्री देवता, उनका साहस नहीं हुआ कि भगवान के पास जाकर शांत करे। ब्रह्मा जी का किसी देवताओं के, यहाँ तक लक्ष्मी जी भी साहस नहीं कर सके भगवान के पास जाने का, लेकिन प्रहलाद महाराज का प्रहलाद महाराज चले। तो यहाँ पर तात्पर्य कहते हैं कि नारायण परा शरीर न कुतस्थिति स्वर्गावर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। यह श्लोक शिव जी ने कहा है। प्रसंग आप लोग जानते होंगे, चित्रकेतु जानते हैं ना, राजा का इतिहास, तो उनको पार्वती जी ने श्राप दे दिया, भगवान के पास श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ, असुर बन जाओ। तो एक बार भगवान के पार्षद दिव्य उनको विमान प्राप्त था, लोगों में अव्याहत गति से कहीं भ्रमण कर सकते थे, भगवान के पार्षदों में अनन्य भक्तों में उनकी गणना थी, और दूसरे क्षण पार्वती जी ने श्राप दिया कि तुम असुर बन जाओ, असुर शरीर में जाओ। तो वह इसके बाद चित्रकेतु महाराज को किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया। तो उस प्रसंग को स्वयं शिव जी ने कमेंट किया, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न विद्यति स्वर्गावर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ, भगवान के भक्त डरते नहीं। एक भगवान के भक्त में गुण होता है अभय, किसी भी परिवेश में वो डर नहीं करता। तो प्रहलाद महाराज का भक्ति का उत्कृष्ट यह है कि प्रहलाद महाराज डरे नहीं, कारण उन्हें भय नहीं लग रहा था, चाहे वो कितना ही भयावह रूप था, लक्ष्मी जी डर रही हैं, ब्रह्मा जी डर रहे हैं, शिव जी डर रहे हैं, सारे देवता डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बड़े निर्भीक होकर, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम जाओ भगवान को शांत करो, क्यों तुम्हारे लिए भगवान का यह अवतार हुआ है, तो तुम शांत करो। तो प्रहलाद महाराज गए और तुरंत ही भगवान शांत हो। तो इस श्लोक में यह बात बताया गया है कि देवताओं ने प्रहलाद महाराज लक्ष्मी देवी को भगवान के पास भेजा, लेकिन लक्ष्मी जी साहस नहीं बटोर सकी, उनको भय लग रहा था, उनको सशंकित थी, इसलिए भगवान के पास गई नहीं, न ऊपे आया, नजदीक नहीं गई, दूर ही खड़ी रही, क्योंकि उनको भय लग रहा था, क्रोध में है, पता नहीं शांत होते तो ठीक था, क्रोध में है कहीं तमाचा चला दिए तो ये तो सामान्य साधारण रूप नहीं है, नष्ट हो जाऊंगी मैं, इसलिए लक्ष्मी जी वहां नहीं गए। और तात्पर्य में लक्ष्मी स्वयं भयभीत थी और उनको ऐसा लग रहा था कि यह रूप कहीं देखा नहीं गया था, सुना नहीं गया था, यह सब हुआ लीला शक्ति के कारण, भगवान की अनंत अनंत शक्ति है, उसमें एक शक्ति है लीला शक्ति, भगवान की कोई लीला होती है विशेषकर भौम लीला, पृथ्वी पर जब भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं तो भगवान की लीला शक्ति का बहुत भारी इम्पोर्टेंट रोल होता है, उस लीला के अनुकूल आप लोग जानते हैं वृंदावन की लीला में, आप जान पढ़े ही होंगे, जानते हैं, सुने होंगे, तो योग माया और वृंदा देवी सुने हैं ना, योग माया पौर्णमासी और वृंदा देवी, भगवान की ब्रज में जो लीलाएं होती है, कोई भी लीला भगवान करना चाहते, भगवान नौका विहार की लीला करना चाहते हैं तो नौका विहार के लिए वहां पर सरोवर होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए, एक नौका भी होना चाहिए, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा, भगवान के सहसा भगवान गोचारण कर देकर तो उनकी इच्छा होगी कि मैं नौका विहार की लीला करूं, तो नौका कौन वहां से खरीद कर लाएगा, क्या जलाशय होना चाहिए, इमीडिएट वहां होना चाहिए, यह व्यवस्था करती है वृंदावन, और उसके अनुरूप मानसिकता तैयार करना पड़े, मन मन में भी है ना, मानसिकता मेंटालिटी, वह योग माया का काम है, पौर्णमासी देवी का काम, और वही लीला शक्ति है। तो भगवान जैसी लीला करना चाहते हैं तो उसी अनुरूप मानसिकता होनी चाहिए और उसके परिवेश भी होना चाहिए, तो इसको लीला शक्ति का। लीला शक्ति ने यहाँ काम किया कि लक्ष्मी जी जैसे भगवान का अतरंग भक्त भगवान से डर गई, पास नहीं आ सकी, और फिर प्रहलाद महाराज का उत्कृष्ट भक्ति का श्रेष्ठ भक्त है। प्रहलाद महाराज भगवान के अन्यतम भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, यह बात। और दूसरी बात बताना है कि भगवान का नृसिंह देव का प्रहलाद महाराज के प्रति अतिशय वात्सल है, अन्य किसी के अपेक्षा ज्यादा वात्सल है, ज्यादा प्रेम है, ज्यादा नृसिंह है प्रहलाद महाराज का। तो इस तात्पर्य में यही बात है, श्लोक और तात्पर्य में बताई गई। ठीक है, हम इसमें लिखा गया क्वेश्चन आंसर इंक्लूड करता है ना,
10:30 के लिए
इन योर क्लास विद इन 9 AM विद क्वेश्चन दैट इंक्लूड्स क्वेश्चन
जनरल।
ठीक है, तो आप लोग पूछिए, हमने जो कहना था इस श्लोक के विषय, हमें जो कहना था हमने बता दिया।
वो तो उनको नहीं मिले,
पिछला कौन सा था श्लोक,
7 श्लोक पीछे जाइए, उसका 6 श्लोक का थोड़ा थोड़ा।
ठीक है, तो कर देते हैं। ठीक है,
पिछला श्लोक था प्रभु जी
7 गिनना है ना,
8वें अध्याय का थोड़ा किन्नर लोक वासी श्लोक
नहीं, गंधर्व उच्च वो श्लोक हो चुका,
गंधर्व के बाद।
ठीक है,
नागा
हरे तवांगजम भवाप वर्ग मार्सता यदेश साधु असुर समापित चारण लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यक्षिपु को विनष्ट कर दिया जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदय में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है, हम सभी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जैसा पहले वर्णन किया गया था कि देवता एक एक करके, पहले भगवान जब नृसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर लिया तो अनेक देवता लोग प्रार्थना की, तो उससे सबसे प्रार्थना, पहला प्रार्थना ब्रह्मा जी की, दूसरे नंबर शिव जी, ऐसे ऐसे। तो इसमें आता है कि चारण लोग, चारण एक विशिष्ट स्वर्गीय लोक के निवासी हैं, तो उन लोगों ने क्या प्रार्थना की है कि हे भगवान, आपने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, ये बहुत अच्छा किया, अनुमोदन किया उन्होंने वध, गलती नहीं करी कि नहीं आपने एक हत्या कर दी एक व्यक्ति की, बस उन्होंने कहा नहीं आपने ठीक किया, क्योंकि इसके कारण, हिरण्यकशिपु के कारण अनेक लोगों के हृदय में भय का संचार हुआ था, तो टेररिस्ट जैसा भयभीत आतंक छा हुआ था, तो आपने वध कर दिया तो जितने साधु पुरुष हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे उसको हिरण्यकशिपु से असुर प्रकृति के लोगों को भय नहीं था, जानते हैं ना, असुर राक्षसों को उसे कुछ नहीं भय था, गलत काम वालों को कुछ नहीं भय था। विश्व इतिहास में यह प्रथम व्यक्ति हुआ हिरण्यकशिपु कि वह जीवन भर यह इस बात को प्रमोट करता रहा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, खूब भोग भोग और दूसरों को प्रोत्साहित करना, और उल्टा करना चाहता था, जितने गलत लोग करते हैं पापी लोग स्वर्ग में जाए और जो पुण्य करते हैं भजन करते हैं उनको कहाँ जाना चाहिए, नरक में जाना चाहिए। वो नहीं सोचता था, यह ऐसा नियम बन जाए, ऐसा व्यवस्था बन जाए कि जितने खराब कर्म है ना उनको स्वर्ग मिले और जितने खराब कर्म करने वाले उनको कहा जाना चाहिए, उनको नरक में जाना चाहिए। तो खराब करने वालों को तो उसके लिए तो सुने हमने रावण सिंह ही बनाना चाहता कहा स्वर्ग में, सुने हमने तब लोग कहा है कि ऊपर से नीचे तक सिंह ही बना देना चाहता था, इसलिए नहीं सिंह बना रहा था कि साधु महात्मा रूप तपस्या कर वो लोग जाए, उनके लिए नहीं सिंह बनाने की योजना, सिंह कौन जाएगा जो लंका में रहते हैं क्या करते हैं, वो मांस खाते हैं, गाय की हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, उन लोगों के लिए सिंह बना दिया। तो ये इसी कैटेगरी का ही असुर था। तो जो साधु पुरुषों के हृदय में भय छाया हुआ था, उन्होंने कहा भगवान आपने नष्ट कर दिया उसको, तो जितने अच्छे लोग हैं उनके हृदय का जो भय नष्ट हो गया, मैं तो कभी उसको तो आपने अच्छा याद किया। तो यह चारण लोगों ने कहा। इसके बाद दूसरा है, दूसरे नंबर पर साधारण है यक्ष लोग। यक्ष जानते हैं ना, यक्ष लोग कौन होते हैं? यक्षों के नायक हैं कुबेर जी। किस लोक में रहते हैं कुबेर जी? स्वर्ग है, स्वर्ग तो जनरल है ना, स्वर्ग तो बहुत बड़ा
पृथ्वी के अर्जुन वगैरह
कहाँ रहते हैं?
हिमालय के
वैकुंठ में नहीं रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन विशेष करके उनका हमें याद नहीं आता है कहीं उनका ऑफिस है जहाँ रहते हैं, और विशेष करके यहाँ पर हिमालय में रहते हैं। हिमालय शिव जी से बड़ी पटता है, मित्रता है, इसलिए शिव जी के साथ ग्रहण करते हैं। तो लोग यक्ष लोग है। यक्ष एक विशेष प्रकार की जाति है, जो आप लोग सुने हमें जो युधिष्ठिर महाराज के साथ जो संवाद हुआ था, धर्म का संवाद हुआ था, धर्म यक्ष के रूप में और पक्षी के रूप में आया। तो ये वरुण लोक के निवासी लोग, उनके जो अनुचर हैं, वो लोग प्रार्थना किए। उन्होंने क्या प्रार्थना किया है, यक्ष लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत्वों के नियामक, हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं, फिर भी दीति पुत्र हिरण्यक्षिपु के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता था। हे नृसिंहदेव, आप यह जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया और इसका शरीर पंच तत्वों में मिल गया है। वो लोग अपनी बातें बताते हैं, यक्ष लोग। यक्ष लोगों को 24 तत्वों के नियामक भगवान को कहते हैं। तो यक्ष लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हिरण्यक्षिपु के जीवन काल में उनको बाध्य किया जाता था कि हिरण्यक्षिपु असुर लोगों का तो सिंह का बांध पालकी है, तो देखिए वो भगवान की सेवा करना है, पूजा करना है, भजन करना है, तो भगवान की सेवा ना तुम लोग क्या करो, असुर लोगों के हिरण्यक्षिपु का पालकी उन्होंने कोई पुजारी है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, उसने तुम ड्रेसिंग करो, अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं कि अब हम लोगों की आपकी सेवा उत्तम उत्तम भगवान कैसे सेवा की जाए, भगवान के लिए फूल बनाना है, कुछ करना है उसके लिए सेवा करना है, वो छुड़ा कर बात के इतना नहीं, ये सब छोड़ो, सुन लोगों का काम नहीं, तुम पाल की हो। तो कहना कि आज आपने उनका पद कर दिया तो बहुत अच्छा किया, आज इसका जो शरीर था पंच तत्वों में मिला गया, तो भगवान को 24 तत्व है प्रकृति के, उसके नियामक भगवान है, आपने इसके शरीर को नष्ट कर दिया, तो इसको जो पांच भौतिक शरीर है अपने कारण में विलीन हो गया, तो आपने अच्छा किया। इसके बाद एक दूसरी जाति है किम पुरुष, ये इस क्रम में बताया जाता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की एक जाति है। वो लोग देखने में ऐसा लगता है कि मनुष्य जैसा है, एक बार भ्रम हो जाता है किम पुरुष से लेकर, देखने को लगता है अरे मनुष्य तो ही नहीं है, मनुष्य जैसा आकार है, किम पुरुष उनको कहते हैं। ऐसे साहस हठात आप लोग देखेंगे तो लगता है कि मनुष्य तो नहीं है, संस्कृत में किम पुरुष, अरे क्या है, मनुष्य तो नहीं है, एक बार मन से निकल जाता है देखने, तो उनको किम पुरुष है, तो वो लोग क्या प्रार्थना है, पापों को प्रार्थना कर दी। वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वर अयम कु पुरुषो नष्टो धिकृत साधुर्य साधुर्य। तो वो लोग किम पुरुष लोग कहते हैं, उन लोगों को किम पुरुष कहा जाता है, और भगवान को कहते हैं कि आपको भगवान को क्या कहा जाता है पुरुष के टर्म में,
परम
पुरुष या महापुरुष कहा जाता है। तो वो लोग समझते हैं कि हम लोगों का नाम में पुरुष है किम पुरुष, और आप में परम पुरुष या महापुरुष, और इसके नाम के बाद पुरुष है, इसको ही पुरुष कहते हैं। तो इसको कहते कुपुरुष, कुपुरुष समझते है ना, खराब आदमी, यह भी पुरुष था। तो हम लोग तीनों पुरुष है, आप भी पुरुष हैं, हम लोग पुरुष हैं, आप पुरुष हैं, यह भी, लेकिन हम लोग किम पुरुष हैं और आपकी सेवा हम करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, और आप तो महापुरुष हैं, और यह जो कुपुरुष है तो इसको आपने कर दिया तो बहुत अच्छा किया, साधुर भीर यदा, आपने जो कहा है बहुत अच्छा, जो किया बहुत अच्छा किया। इसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी थोड़ी बातें लिखे हैं, ये लोग भी अनुमोदन करते हैं कि आपने इस खराब व्यक्ति का वध कर दिया। तो प्रभुपाद जी भागवतम भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक याद करते हैं, इसे तात्पर्य में, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजामि परित्राणाय साधना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जीवे। वो लोग कहते हैं कि असुर का आपने वध कर दिया और हम साधुओं की आपने रक्षा की। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन वर्णन किया। पहले तो उन्होंने कहा कि कब कब अवतार लेते हैं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान कहते हैं कि उस समय मैं अवतार लेता हूँ, अपने नित्य धाम से वैकुंठ धाम से इस पृथ्वी पर आता है। आकर क्या करते हैं, भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन, किस लिए अवतार लेते हैं, तो अनेक कारण है, अनेक अनंत अनंत भगवान के उस अवतार के कारण होते हैं, प्रयोजन होता है, उसी के करते हैं। भगवद गीता में भगवान तीन बातें बताते हैं, परित्राण आय साधना, भगवान के अवतार का एक प्रयोजन होता है कि साधुओं की रक्षा, परित्राण आय साधना, और दूसरा विनाशाय दुष्कृताम, भगवान जब अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और असाधु अधार्मिक लोगों को नष्ट करते हैं, परित्राण आय साधना विनाशाय दुष्कृताम। और इसके अतिरिक्त भगवान वहीं पर भगवत गीता में तीसरे प्रयोजन की बात करते हैं, तीसरे कारण की तरह धर्म संस्थापना अर्थात है, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं बार बार युग युग में यहाँ पर अवतार लेता हूँ। तो ये लोग किम पुरुष लोग कहते हैं कि आपने ये धर्म की बात पर दो बातें कहते हैं, आपने परित्राण है साधुओं की आपने रक्षा किया और हृषिपुर का नष्ट कर दिया, धर्म परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, और धर्म संस्थापना था धर्म की स्थापना करते, इन्होंने इन लोगों ने किन पुरुषों ने धर्म की तो बात नहीं कही, लेकिन यह बात उन्होंने ही कही कि आपने इसके नष्ट कर दिया, बहुत आत्मा आपके अवतार का ही हमेशा प्रयोजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रार्थना है, उसी क्रम में एक वैतालिक होते हैं, उन लोगों ने क्या प्रार्थना किया, सभा सुसत्रेषु तवा मलम जशो गीत्वा सपर्या महती महती लभा महे यस्ता मैसिद्ध वस्मेश दुर्जनो दृष्ट्या हतस्ते भगवान था भयं।
वैतालिक लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके निर्मल यश का गान करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा बड़ा भाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह बध कर दिया जिस प्रकार कोई भीषण रोग को अच्छा कर दे। तो वैतालिक लोग प्रार्थना करते हैं कि वो तो कहते हैं कि हम लोगों की बड़ी प्रशंसा होती थी, अपने को कहते हैं वैतालिक लोग, हम बड़े समान प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे समाज में, हमारे प्रतिष्ठा का क्या काम था कि यदि बड़ी बड़ी जो सभाएं होती थी, लोगों का समुदाय एकत्रित होता था, कहीं बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो हम लोगों को अवसर दिया था आपकी कीर्ति का, जश का गान करने के। हम लोग भगवान के जश की कीर्ति का गान करते थे, आपके विषय में कुछ बोलते थे, आपके गुणों का वर्णन करते थे। लेकिन जब से यह हुआ तो वैसी सभाएं नहीं हो पाती थी, साधु जी इकट्ठा हो सके, इकट्ठा होकर यज्ञ करते, वो बंद कर दिया गया। तो हम लोगों को अवसर नहीं मिलता था कि हम भगवान की कीर्ति का कीर्तन करें, भगवान के जश का गान करें, बल्कि हम लोगों को बाध्य किया जाता था कि असुरों की स्तुति करते रहे, इन लोगों भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना तो बंद ही थी, वहां तो कोई सभा ही नहीं होती थी, यज्ञ ही नहीं होता था, कोई अवसर ही नहीं था, उसे बाध्य किया जाता था। तो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि इसको नष्ट करने, तब पुनः हम लोगों को अवसर मिलेगा भक्ति करने का, हम भगवान के आपके यश का कृति का गान कर सके। तो आपने इसे अच्छा कर, अच्छा काम कर दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट कई का श्लोक है समझो, इसके बाद किन्नर, किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त न होकर हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। अब आपने इस पापी का वध कर दिया है, अतः हे नृसिंहदेव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहें। दूसरे लोगों कहते हैं किन्नर, यह भी एक जाति है उस तरह लोगों के निवासियों की। फिर वही बात कहते हैं कि हम लोग, हे भगवान, हम आपके सेवक हैं, भगवान आपकी सेवा हमको करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को आपकी सेवा छोड़ा कर बेगार, बेगार जानते हैं ना क्या कहलाता है, मतलब का नहीं, बिना वेतन का काम। कुछ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो बहुत बड़े लोग, छोटे छोटे लोगों को रोज नहीं, कहते हैं कि एक दो दिन के यहाँ हमारा कुछ काम कर दो, जाकर घर का सफाई कर दो, रही साफ कर, उसके लिए कुछ पैसा नहीं देते हैं। यहाँ पर पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, दादागिरी से करते हैं, और नहीं तो नहीं करेगा तो उसको सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये लोग किन्नर कहते हैं कि हम लोगों को बेगार में लगाएगा, इन लोगों का काम कर गए, इसके यहाँ घर में कुछ काम कर रहे, असुरों के यहाँ कुछ काम कर रहे, और उसके बदले में नहीं देना, अपनी जीविका के लिए दूसरा काम करना होता था, लेकिन उसी में सात दिन एक दो दिन चलो भाई इसका हम कर। आप लोग जानते हैं गाँव में पहले, अभी तो नहीं प्रथा शायद रही, जमींदार लोग होते थे जिनकी खेती होती थी, सैकड़ों एकड़ खेती होती थी, और छोटे छोटे भी किसान होते हैं, तो साल में दो तीन दिन ऐसे उनको करना पड़ता था कि पूरी उनके खेती में काम करना होता था, वो सब बेकार, उसके लिए उनको पैसा नहीं दिया जाता, बस उसमें लगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा भोजन दे रहे हैं, लेकिन उसमें से काम। तो इन किन्नरों को वह क्या करता था, आप अपने जीविका के लिए कुछ काम करो जो कुछ करना है, लेकिन कुछ दिन तक आकर कुछ बेकार भी करना, जीविका के लिए कहीं से अर्न करो, लेकिन कुछ दिन तक के साथ हम लोग को बेकार में लगे, तो बेकार में लगे, बेकार में लगे, बिना कुछ पैसा दिए उनसे काम ले। किन्नरों ने, जो किन्नर थे उनके लिए। और अंतिम प्रार्थना है भगवान
भगवान के पार्षद पार्षद में जो वैकुंठ में रहते हैं भगवान के अन्यतम भक्त हैं। हम लोग कथा जानते हैं, मंगल प्रार्थना फिर प्रार्थना को पढ़ लेते हैं, इसके बाद वो लोगों की क्या विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, हे स्वामी हे शरणदाता, आज हमने नृसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने श्राप दिया था जिसे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। यह सर्वथा भिन्न है। पार्षदों ने प्रार्थना किए थे और उन्होंने क्या किया, वो लोग अभिज्ञ थे, उन्हीं के गुरु था, उन्हीं के क्या कहते हैं, उन्हीं के साथ में रहने वाला लीडर था, उन्हीं के साथ रहते थे, पार्षद भी वैकुंठ रहते हैं। और तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह जो हिरण्यकशिपु जय अथवा विजय दोनों में से जो है, जय था कि विजय था, दोनों में से कोई ऐसे, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में यह जो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु हम लोगों का ही मित्र, हम लोगों का साथी, जय और विजय में से आपका ही पात्र था, तो यह असुर ब्राह्मणों से श्राप दिया था, ब्राह्मणों के श्राप के कारण यह असुर बन गया था, लेकिन आज आपने उसे उसको वध कर दिया, तो आपकी इस पर महती कृपा है, इस पर आपने कृपा किया, वध कर दिया तो इस पर बहुत आपकी कृपा हुई कि असुर भाव के प्राप्त हुआ था ब्राह्मणों के श्राप से, आज वो श्राप से और मुक्त हो गया, इससे विशेष कृपा है। अब यह कथा सब लोग जानते हैं, जय विजय भगवान के अन्यतम पार्षद हैं, वैकुंठ में इनका नित्य निवास है, वहाँ पर ब्रह्मा जी के चारों पुत्र चतुष कुमार, चार कुमारों का उन्होंने थोड़ा सा अपराध किया, तो उस अपराध के कारण उन लोगों ने शंकरादि ऋषि उनको श्राप दिया था, तो श्राप के कारण असुर भाव को और असुर शरीर को प्राप्त किया, तो ये लोग प्रार्थना करते हैं कि आपने इस पर कृपा की, उन्होंने नहीं कहा कि इसको वध किया तो इसका बहुत कुछ हानि किया, बल्कि आपकी महती कृपा है, अति उच्च कृपा है कि आज आपने अपने इसको शरण में ले लिया, पुनः अपने पार्षदत्व पार्षद शरीर में इसको ले लिया, तो वो लोग इसको अनुमोदन करते हैं, जैसे कहते हैं हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। तात्पर्य में यही बात लिखते हैं कि प्रभुपाद जी कथा का वर्णन करते हैं, कथा से आप लोग परिचित हैं, वह कथा एक प्रकार है, जब प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बार भगवान की इच्छा से चतुष कुमार शनकादि जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए गए वैकुंठ में, उनकी अव्याहत गति है, कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए आकाश में जाना चाहते हैं, पृथ्वी पर नीचे जाना चाहते हैं, जल में जाना चाहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनकी ऐसी दिव्य सिद्धि है, अव्याहत गति है, तो वे लोग चारों शंकरादि जो चारों कुमार थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, एक बार उनकी इच्छा हुई कि हम भगवान के पास चले, भगवान का दर्शन, तो वैकुंठ में चले गए। जब द्वार पर गए तो वहां पर भगवान के अन्यतम भक्त दो द्वारपाल थे, जय और विजय उनका नाम, वहां पर थे, रखवाली करते हैं, तो और ये लोग चारों रहते हैं 5 वर्ष के उम्र के रहते हैं, हमेशा ब्रह्मा जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, शिव जी से भी बड़े हैं लोग, सबसे बड़े हैं, लेकिन हमेशा इनका शरीर 5 वर्ष का बना रहता है, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, और ये कोई कपड़ा धारण नहीं करते, कुछ भी दिगंबर इसे कहा जाता है, कुछ भी धारण नहीं करते, कॉपी भी नहीं पहनते, उसी रूप में रहते, ये लोग सीधे वैकुंठ पर गए प्रवेश करने घुसने लगे, तो जय और विजय को लगा कि लड़के छोटे से नंग खड़े, ये क्या इनका क्या हो रहा है, क्या, तो उन्होंने ऐसे कहा था नहीं तो ऐसे आगे जो चल रहे थे तब ऐसे दंडा दंड लगा दिया, छड़ी को ऐसे रोक दिया, ये लोग एकदम भगवान के चिंतन में होते, भगवान के लीला चिंतन करते हुए जा रहे थे, तब तक सामने दंत रुक गए। उनको व्यवधान भगवान के दर्शन में व्यवधान कौन डाल रहा है? तो भगवान की इच्छा से उन ऋषियों में क्रोध है। वैसे ऋषि में क्रोध और काम से ऊपर थे, लेकिन भगवान की विशिष्ट इच्छा से उन ऋषियों में क्रोध आया और उन्होंने देखा कि रोकने वाले दोनों तरफ से दंडे लगाए, इधर से पेट पर जहां भी रुके इधर देखे तो लगे तो रुक रहा है। तो तुरंत चतुष कुमार ने श्राप दिया कि मूर्खों, तुम लोग यहाँ पर भी कोई भेद बुद्धि करते हो भगवान के, तुम पार्षद नहीं, तुम तो असुर हो जाओ। हम लोग भगवान के दर्शन तुमने बाधा दिया, दर्शन नहीं करने देते, तुम भी असुर हो जाओ। तो जब जय विजय को पता लगा हम लोग को साप मिल गया, विष्णु का साप मिथ्या नहीं हो, तुरंत उनके पैर पकड़ लिए, रोने लगे। इसके बाद उधर भगवान भी आ गए, उधर से भगवान भी अंतःपुर से आ गए, गेट पर आ गए, भगवान आ गए, सब सभी और लोग आए। उनको साप हो गया कि रोने लगे कि हम लोग भगवान की सेवा छोड़कर असुर मरते जाए, असुर में जाना पड़ेगा। तो वो रोने लगे, भगवान आए वहाँ पर, भगवान भी चतुष कुमार से क्षमा याचना करने लगे कि मेरे सेवकों से गलती हुई है, मतलब मेरी ही गलती है, मैंने ऊपर ट्रेनिंग नहीं दिया था, प्रशिक्षण देखा, क्षमा कर दी। तो ऋषि लोग भी पिघल गए, दया आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो श्राप दे दिया गया है, मिथ्या नहीं हो सकता है, परंतु क्या व्यवस्था होने लगी, जल्दी कैसे श्राप नष्ट हो, जल्दी कैसे आएंगे। साथ मिल गया तो उन्हें ऋषियों ने कहा कि ठीक है, यदि भगवान के प्रति असुर भाव से युक्त होंगे तो इनको 3 जन्म लगेगा, और साधु भाव से भजन करेंगे, पूजा करेंगे भगवान का, इनको 7 जन्म लगेगा। बढ़िया से भक्ति करेंगे तो 7 जन्म में आएंगे, और एकदम भगवान से द्रोह करेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो 3 जन्म। फिर उन पर छोड़ा गया कि आप 7 जन्म भी बहुत ज्यादा नहीं है और 3 जन्म तो कम है। वो लोग इतने डिस्परेट थे, बिहोल थे भगवान के धाम में, आप जल्दी से आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, मतलब असुर भाव से युक्त होना। तो इसीलिए जय और विजय आसुरी भाव से युक्त थे, इच्छा थी जल्दी जाने के लिए, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, जप करेंगे तो 7 जन्म लगेगा, ऐसे लड़ाई झगड़ा द्रोह करेंगे, अत्याचार करेंगे, 3 जन्म। तो उन्होंने चॉइस किया था, ठीक हम लोग जल्दी आना चाहते हैं। तो प्रथम बार निराक्ष और निरीक्षित बने थे जय विजय, द्वितीय बार रावण और कुंभकर्ण, और तृतीय बार बने थे कौन जाने, तीसरे बार कौन दंतवत और शिशुपाल। तो जब भी ये बने थे तो भगवान ने उनका वध किया था, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु के रूप में आए थे, तो भगवान हिरण्याक्षिपु का वध किए थे नृसिंह देव के रूप में, और हिरण्याक्ष का वध किए थे बड़ा शुक्र रूप से भगवान धारण करके, और रावण और कुंभकर्ण का वध किए थे राम के रूप में, और शिशुपाल और दंत वक्त्र का वध भगवान किए थे। तो 3 जन्म में ये लौट गए हैं ऐसा सुना जाता है, लेकिन एक बार और लोग आए, उन्होंने पता लगा कि भगवान इसी में तुरंत एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं, तो साफ तो नष्ट हो गया था, अब उन्होंने वॉलंटियर हम लोग थोड़े भी देख लेना चाहते हैं इसमें क्या गिरा कर, तो जगाई और मधाई के रूप, लेकिन इस बार वो साप के कारण नहीं आए, साप उनका नष्ट हो चुका, लेकिन अपनी स्वेच्छा से लीला में शामिल हुए थे, इसलिए भगवान ने उनका वध नहीं किया इस बार, नहीं तो अभी लीला करते तो वध नहीं किया, वध नहीं करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा। तो शिशुपाल आप लोग हिमाचल शिशुपाल का वध भगवान ने किया था, हस्तिनापुर में उनका वध किया गया। एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्ष परीक्षा में जो युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था राजस्वी यज्ञ, और यह भगवान का क्या कहते हैं शिशुपाल भाई लड़का था, मौसी का लड़का था, शुल्क सर्वा देवकी की एक बहन लगती थी उसका भाई सुरसा, उसका तो मौसेरा भाई लड़का था, मौसी का लड़का। तो जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो कोई एक विशिष्ट अंग था अच्छा नहीं लगता है, दो आंखें कसी पटा। तो उन ज्योतिषों ने बताया था, ज्योतिषज्ञों ने बताया था कि जिसके दर्शन से जिसके गोद में लेने से यह लड़के का तीसरा आंख नष्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसी से इसकी मृत्यु। तो मैं तेरी माँ थी, जो आता था तो उसकी गोद में देती थी, तो उसी क्रम में एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में लिया, तो देह ही भगवान लिए गोद में, भाई तो लगता ही था, ज्यादा उम्र का अंतर नहीं था, लिए तब तक वो एकदम से शरीर ठीक हो गया। तो यह तो ठीक हो, यह तो काम तो अच्छा हो गया, कृष्ण के संस्पर्श से उसका शरीर जो खराब था ठीक हो गया, लेकिन अभी निर्धारित हो गया कि इसकी मृत्यु। तो वो बेचारी इनकी मौसी थी भगवान की, खूब समझाती थी भगवान से, कही कि कृष्ण इसको मत मारना, तुम्हारा भाई ही है, छोटा भाई है, मौसेरा भाई भाई ही है, तो आप भगवान कहे ठीक है, सैकड़ों अपराध करेगा तो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन अब मौसी लेकिन ज्यादा अपराध 100 से ज्यादा करेगा तो मैं, लेकिन 100 इसके अपराध में क्षमा करूंगा। और उसको खूब समझाती थी इसको शिशुपाल को, बेटा बढ़िया से प्रेम से रहना, तुम्हारा भाई है, मौसी का लड़का है, कृष्ण से किसी और खूब बढ़िया से प्रेम से रहना। लेकिन भगवान तो मान गए, लेकिन उसके मन में बात आई। तो शिशुपाल के विषय में ऐसा कहा जाता है, जब छोटा था तभी से कहीं पेड़ के नीचे घर के बाजू में बगीचे में जाकर बैठ जाता था, और बैठ कर अकेले कोई नहीं होता था, कृष्ण को खूब गाली देता था और थोड़ा सा पानी रखता था, एक गिलास पानी रखता था, और जब गला सुखने बोलते बोलते कृष्ण को गाली निंदा करते करते होता था, तो थोड़ा सा पानी एक घूट पी कर फिर चालू करता था। तो सुबह से शाम तक ज्यादा से इसी में। तो फिर भी डायरेक्ट कोई इनकाउंटर नहीं था, एकदम डायरेक्ट इनकाउंटर कृष्ण से तब हो गया कि उसका विवाह उसके पिता ने नहीं, बड़े भाई ने नियुक्त किया था रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी के साथ विवाह होना निश्चित किया गया था परिवार वालों के, शिशुपाल के साथ विवाह कर रहे। तो यहीं पर विदर्भ में शिशुपाल आया हुआ था अपने, जिससे बरात के लोग आते हैं ना पूरे वहां पर आया हुआ था। तो वहां पर रुक्मिणी जी, आप जानते हैं रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी चाहती थी अपना विवाह श्री कृष्ण से करना, भगवान से करना चाहती थी। तो भगवान भी वहां पहुंचे, कथा आप लोग जानते ही हैं, वहां पर भगवान ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जन्म से ही कृष्ण के प्रति वो निंदा करता था, कृष्ण के प्रति उसके मन में आक्रोश था, जिसके साथ जिस स्त्री के साथ जिस लड़की के साथ उसका विवाह होने लगा था, कृष्ण ने डायरेक्ट उसका अपहरण किया था, तो भारी क्रोध में होगा, किसी कोई सीमा नहीं थी, पहले ही क्रोध था, तो जन्म से ही क्रोध था, कोई सीमा नहीं। तो यह बात, लेकिन अब कर क्या सकता था बेचारा, युद्ध थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन वो तो युद्ध में भाग नहीं लिया था, दूसरे लोग करते जैसे तैसे। अंत में महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, तो उस यज्ञ में क्योंकि वह भी रिलेटिव था, संबंधित राजा था, भगवान तो भगवान थे ही, यही भाई लगते थे, और भाई ही लगता था, शिशुपाल युधिष्ठिर महाराज का भाई लगता था, और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का ही भाई लगता था। तो जब वहां पर राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, तो उसमें शिशुपाल भी आमंत्रित था, और सामान्य मतलब की गेस्ट नहीं था, सामान्य व्यक्ति ने भाई है, राजा है, राजकुमार है। दूसरी बात है भगवान का भी भाई लगता है, तो बड़े सम्मान के साथ तो सभा का काम चल रहा था। एक बार उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि इसमें जितने लोग इकट्ठे हुए हैं अथवा नहीं भी इकट्ठे हुए हैं, इसमें सबसे अन्यतम पूज्य व्यक्ति, पूजा का पात्र कौन है, इस यज्ञ में सबसे पहले किसको सम्मानित किया जाए, किसको पूजा, किसकी पूजा की जाए। पूरे सभा में हस्तिनापुर में लाखों लाखों लोग, यहाँ तक वर्णन किया जाता है कि उस यज्ञ में देवता लोग भी उपस्थित थे, मूर्तिमान देवता लोग भी बैठे हुए थे। महाराज ऋषि के उस राजकीय यज्ञ में भगवान तो थे ही, इसके साथ अनेक देवता लोग मूर्तिमान वहां पर उपस्थित थे, सभी लोग वरिष्ठ लोग, उसमें सबसे पूजा पहले किसकी की जाए, इस पर विचार हो रहा था। तो सहदेव जो युधिष्ठिर महाराज के भाई थे वो खड़ा हुए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले पूजा होनी चाहिए भगवान कृष्ण की, सबसे पूज्य व्यक्ति कृष्ण, और इसका सेकंड इसे कहते हैं अनुमोदन किया भीष्म पितामह। सहदेव जो भी कहते हैं सबसे पूज्य व्यक्ति कौन है यहाँ का, इस सभा में चाहे सभा से बाहर भी कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। इसका समय दिया गया कि किसी को और भी कुछ मंतव्य है इसके सपोर्ट में चाहे अगेंस्ट में किसी को कहना है कुछ कह सकता था, स्वतंत्रता कोई भी कह सकता था, यह जो प्रस्ताव पारित किया जा रहा है सही है कि नहीं है। तो उसमें शिशुपाल अपना हाथ उठाए, मुझे भी कुछ कहना। तो बड़े सम्मान राज कुछ कहना चाहते हैं, अभी पता नहीं था कि अनुमोदन करेंगे कि गुरु करेंगे, एकदम बढ़िया से सम्मानित उनको स्टेज दिया गया, माइक दिया गया, ठीक है बोलिए। बोलने में बड़ी श्रेष्ठ भाषा में चालू किया। मैं समझता हूं कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के भाई हैं, कृष्ण के भाई लगते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यदि महाराज युधिष्ठिर कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, उनको करना चाहिए, उनका रिलेटिव है, भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है आपका, परंतु यह उनका प्राइवेट काम है, पारिवारिक काम, घर में ले जाइए आप पूजा जीवन भर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके सामने कृष्ण की पूजा किया जाए यह एकदम सर्वथा अन्याय है। तो उसने कहा है युधिष्ठिर महाराज, ये आपका जो व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है, आपका फैमिली मेंबर है, आप पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप पूजा करते रहते, परंतु सभी सभा सबसे पूज्य व्यक्ति है या नहीं। युधिष्ठिर महाराज से कहा कि युधिष्ठिर महाराज यदि आप पूजा कर, आपको यह आग्रह है कि आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति पूजा करने के योग्य है, तो मैं कहता हूँ सबसे पूज्य यहाँ पर आपके परिवार के भीष्म पितामह है, सबसे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, द्वादश आचार्यों में से है, इनकी पूजा की, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इनके समान कौन, आपको आग्रह है कि आपके परिवार के ही किसी की पूजा करने के भीष्म पितामह की पूजा कीजिए, और नहीं तो आपके परिवार में जैसे हमारा सबसे पूज्य अर्जुन है, विश्व का सबसे बड़ा आर्चर, सबसे बड़ा धनुर्विद्या का ज्ञाता, किसकी पूजा कीजिए। यदि आपका आग्रह है कि परिवार के ही लोगों में से किसी को सिलेक्ट करना है, तब और भी नाम लिया है, यह पूज्य है, वह पूज्य है, उसकी पूजा, यहाँ तक वो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दुर्योधन की पूजा कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट अथवा कर्ण की पूजा कीजिए, इससे बड़ा दान कौन हो सकता, बहुत लोगों का नाम रखा है। तो वो तो सभी इस मीटिंग में नहीं नाम बताया जाता, सबके गुणों का वर्णन किया गया, किया गया, यह पूज्य है, वह पूज्य है। अंत में कहा कि मेरी समझ से दुनिया का सबसे बड़ा क्षत्रियात्म, सबसे कन्नम व्यक्ति कृष्ण है। तो यह बात क्या हुआ, तो उसने कृष्ण कथा का वर्णन किया हुआ, अब तो जितना वर्णन कर सकेंगे आप लोग, 10 बजे तक मैं करता हूँ। देखिए इसका जन्म हुआ वसुदेव जी
थे और देवकी माता देवकी माँ ही बुआ कहा जाता मौसी मौसी का पुत्र लेकिन अभी गर्भ में नहीं आया था इतना ही निर्धारित हुआ कि यह व्यक्ति जन्म लेगा उसी दिन से माता पिता पर संकट आ गया कुलक्षण व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेने वाला था जन्म लेने से पहले माता पिता को कितना कष्ट आना पड़ा जेल में जाना पड़ा कुलक्षण व्यक्ति है ना जो लड़का अभी जन्म लेना आएगा उसके पहले माता पिता को संकट आ गया और देखिए जन्म हुआ इतना नालायक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी माँ कोई भी पिता जन्म लेता अपने बच्चे को अपने पास रखता है पालन पोषण करता है उसी रात्रि को उसकी माता ने फेंक दिया दूसरे के इसमें कोई गुण होता है वसुदेव जी हमारी जो मौसी है उन्होंने समय पर जानती थी और ज्ञानी थे इस लड़के को तुरंत उसी दिन फेंक दिया और वहां गया तो देखिए एक क्षत्रिय परिवार में जिसका जन्म हुआ है अरे किसी बच्चे को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए प्रथम इसने काम के स्त्री का वध इसने किया उतना का वध किया एक पुरुष के लिए क्षत्रिय के लिए स्त्री का वध एकदम निषिद्ध है जानते हैं ना किसी क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण का वध बच्चे का वध स्त्री को हाथ नहीं उठाना चाहिए इसने क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर इसने नलायक ने क्या किया कि स्त्री का वध किया यह नहीं कहा छह दिन था साफ कर किसी का और जो मूर्ख लोग ऐसी बड़ी प्रशंसा कर इसने क्या किया है एक सांप मार दिया सांप मारना बहुत बड़ी बहादुरी का काम दो दो बैल की हत्या की गो हत्यारा है बदसासुर और वृषभ है हरिशासुर बैल की हत्या करने वाला है गाय की हत्या करने वाला कुछ हो सकता है इसे मारा है ना आप लोग जानते हैं ना बैल को मारा है बछड़े को मारा है गोबध इसने किया और बड़ी ऐसी प्रशंसा लोग एक पक्षी को मार दिया पक्षी को गधा को मार दिया गधा को कोई छूटा गधा जानते हैं जो भी लोग होते हैं अच्छा आदमी टच कर जाता है स्नान करता है गधा मार दिया पक्षी मार दिया यह भरी मिलता है एक बात की चर्चा नहीं किया गोवर्धन का नाम नहीं लिया इसने क्या किया और तो और बेचारे बाप रे बाप इससे भारी भूल हो सकता है मथुरा सप्तपुरियों में से एक है मथुरा अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा सप्तय का मोक्ष दायिका अब मथुरा से कौन पवित्र स्थान हो सकता है मथुरा जिसका जन्मभूमि जिसकी मथुरा है सात पुरियों में से सर्वश्रेष्ठ धाम है वहां को छोड़कर या नालायक समुद्र में जाकर रहता है कोई भी व्यक्ति जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी जन्मभूमि का इसने और वह भी जन्मभूमि साधारण नहीं मथुरा जैसी जन्मभूमि का इसने त्याग किया और त्याग के कारण क्षत्रियों के सबसे खराब काम है वो क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा गाली है रण छोड़ कोई व्यक्ति क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया भाग जाता है पीस दे देता है शत्रु को तो नलायक समझ जाता है इसने क्या किया अब भी जानते हैं ना रणछोड़ जो नाम है हम लोगों के लिए कोई विशेष बात नहीं है लेकिन एक क्षत्रिय के लिए रणछोड़ सबसे बड़ा अपशब्द है सबसे बड़ी निंदा है सबसे बड़ा गाली है इसने युद्ध में भागा है क्षत्रिय का इसने नाम डुबाया है और युधिष्ठिर कह रहा है कि यही सबसे पूज्य है फिर युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर आप पूजा करना चाहते हैं आप प्राइवेट में ले जाकर जितना पूजा कीजिए सबको मूर्ख मत बनाइए यही सबसे बड़ा पूज्य है और इतना तो कहा ही अब डायरेक्ट कृष्ण में पड़ा साहब कहने लगे तुमको कैसी लज्जा नहीं आती इस सभा में कैसे बैठे हो कैसे मुंह निकले तुमने ये सब गलत गलत काम किया है कैसे साहस करते हो सामने बैठने का तुम लोग जहाँ अलग प्राइवेट में बैठना चाहिए एकदम तुम पड़ा हूँ ये लोग तो मूर्ख हो गए हैं कृष्ण पितामह को समझ में आया कि ऋषि तुम्हारे स्नेह में पढ़कर पूजा करना चाहते हैं लेकिन तुम कैसे शर्म नहीं तुमको आती है कि यहाँ पर बैठ के सामने आकर मुंह दिखाते हो तो भगवान तो गिन रहे थे एक दो अपराध हो गया सौ से बहुत अपराध किया है भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र पड़ा और सीधे सुदर्शन
आश्रम चक्र नाचता गया, तो गले काट दिया और कट गया, तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य प्रकाश ज्योति निकला, आकाश में गया सबके सामने, बड़ा आश्चर्य की बात थी। गला कट गया तो शरीर से दिव्य प्रकाश, वहां पर हजारों लोग बैठे हुए आंख को चौध्यान देने वाली तो आकर्षित करने वाली ज्योति थी, आकाश में गई, आकाश में कुछ तो उठे होते सब ने देख रहे, देखते देखते आयु भगवान के चरणों में समा गए। तो दूसरा जो प्राण था, जीवनी था, अस्तित्व था शिशुपाल का, भगवान के चक्र से खत्म हुआ, आकाश में गया। सबके मन वहां पर लाखों लोग बैठे थे, घूमते घूमते आकर भगवान के चरणों में समा गए, भगवान के उपासदत्व को प्राप्त कर लिए। तेईसर शिशुपाल का बौद्ध भगवान ने किया। रावण के विषय आप लोग जानते हैं, ते लोग कहते हैं कि जय विजय आपके पार्षद थे, भगवान ने आपने इसका वध किया, बहुत उत्तम काम किया और यह इन पर महती कृपा है। तो यद्यपि कि शिशुपाल का वध भगवान ने किया, लेकिन यह कृपा को देखिए, वहां पर युधिष्ठिर महाराज सारे ऋषि मुनि देवता लोग चकित हो गए कि जिस कृपा को हजारों हजारों जन्मों तक तपस्या करके, भक्ति करके, स्वाध्याय करके, दान देकर वो लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग प्राप्त नहीं करते हैं, उस सौभाग्य को शिशुपाल कैसे प्राप्त कर गया, भगवान को प्राप्त कर गया, जबकि इसके जीवन में भगवान को गाली देने के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, यह कैसे, तो उस पर कृपा है। तो यहाँ पर ये लोग पार्षद भी कहते हैं कि आपने महती कृपा की, आप युधिष्ठिर महाराज एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ऐसी कृपा इसको कैसे मिल गया। तो यहाँ पर पार्षद कहते हैं कि आपकी विशेष कृपा है, भगवान की विशेष, भगवान किसी अपने किसी का वध करते हैं तो वह भगवान की विशेष कृपा होती है। इसके बाद एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरसरा नो पय तुम अशकन मनु सनम्भ शुद्रासदम। नारद मुनि ने कहा ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ कि ये भगवान के समक्ष जाएं, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। देवता ब्रह्मा नारद जी कहते हैं कि कोई भी साहस नहीं कर सकता, भयभीत थे, प्रार्थना कर रहे थे, दूर से कर रहे थे, कोई साहस नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित थे, अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी को कहा, जो आज के श्लोक में लक्ष्मी जी आप शांत कीजिए, लक्ष्मी जी फेल्योर हो गए। तो नेक्स्ट श्लोक है, तो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद महाराज को और लक्ष्मीदेव शांत। तो ठीक है, हम थोड़ा सा वो चूंकि वो लोग प्रार्थना में कहे हैं कि आपने जय विजय पार्षद के आपके अन्यतम भक्त हैं, इनको इसको मार दिया, तो भगवान आपने इस पर महती कृपा की, विशेष कृपा की है। तो बस कृपा का ही वर्णन है। ठीक है, प्रश्न
यहाँ पर तीन तरह के लोगों ने, जैसे सकाम भक्त लोगों ने प्रार्थना की, फिर विष्णु के वासी लोगों ने प्रार्थना की, अब आगे जाके प्रहलाद महाराज प्रार्थना करेंगे। तो सकाम भक्तों से तो उनके प्रार्थना से तो भगवान लक्ष्मीदेव प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन विष्णु के पार्षदों से भी प्रसन्न क्यों नहीं हुए, और इनमें और प्रहलाद महाराज के प्रार्थना में अंतर क्या, जरा इसका।
उसी बात की चर्चा कहते हैं ना, इस विशेष लीला में भगवान नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई करना चाहते, प्रहलाद महाराज को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहते, इसीलिए लक्ष्मी जी भी, लक्ष्मी जी तो सामान्य भक्त नहीं है, लक्ष्मी जी तो एक अन्यतम भक्त है ना, लक्ष्मी से श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं है। तो लेकिन भगवान वहाँ पर एक विशिष्ट भक्त प्रहलाद महाराज के यश का प्रतिपादन करना चाहते थे कि वह अन्यतम भक्त है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी जो काम नहीं कर सकती है, लक्ष्मी जी को भी जो कॉन्फिडेंस भगवान में नहीं है, वह प्रहलाद महाराज ने यह भगवान प्रदर्शित करना तात्पर्य में आप इसी के लिए तो उन्होंने कोट किया है मध्वाचार्य का श्लोक प्रभुपाद जी कोट करें। श्लोक ही है क्योंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज पर विशेष कृपा की थी अतः वे शांत तथा निर्भक बने रहे। यद्यपि सारे देवतागण यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान नृसिंह देव से भयभीत थी। तो प्रहलाद महाराज की भक्ति के उत्कृष्ट है सबसे भक्त श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की यह इच्छा थी यह प्रदर्शित किया जाए इसीलिए लक्ष्मी जी से कोई भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकता। नहीं तो लक्ष्मी जी को भय भी नहीं होना चाहिए था वो तो जानती थी इसीलिए अदृष्ट और अदृष्ट और अश्रुत शब्द है इसके लिए प्रभुपाद जी लीला शक्ति का वर्णन करते हैं। तो लक्ष्मी जी नहीं कर सकती उसमें लीला या बढ़िया से संपादित लीला हो सके इसलिए इसलिए लक्ष्मी जी भी उनको साथ प्रसन्न नहीं कर सकते।
भगवान नरसिंह देव केवल प्रहलाद महाराज के लिए आए थे अन्य भक्तों के लिए रक्षा के लिए क्यों आए?
इमीडिएट तो वहां पर वो अपने प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए लेकिन वो उस रूप से भगवान सभी सभी भक्तों की रक्षा करते हमेशा कर रक्षा करते। ब्रह्मा जी जब प्रार्थना के सत्यम विधा यह कहा गया है सत्यम विधातुम निर्भित भाषतुम अपने भक्त ने कह दिया है कि एक बात आप लोग जानते होंगे पढ़े ही हैं जब हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज से बातचीत हो रही थी तो हिरण्यकशिपु ने यह बात कहा कि जिस भगवान की तुम आराधना करते हो विष्णु की आराधना करो कहाँ है कहाँ रहता है। तो प्रहलाद महाराज ने यह उससे बताया कि वो सभी जगह भगवान रहते हैं ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान तो वहाँ पे इमीडिएट महल में बातें हो रही थी एक पिलर था तो उसने कह दिया कि यदि सभी जगह रहते हैं तो इस पिलर में भी हैं हाँ तो इसके बाद उस पिलर पर ही मारा था तो उस पिलर को फाड़ करके भगवान तो सत्यम विधातुम निजभृत भाषतुम एक भक्त ने कह दिया ऐसे भगवान सभी जगह लेकिन भक्त ने कह दिया कि इस पिलर में तो अब उसका यदि वहां से मारते पर मारा उसे नहीं निकलते ऐसे भगवान तो है प्रकट नहीं होते तो कम से कम इमीडिएट तत्कालिक रूप से समझा जाता है कि प्रहलाद महाराज जो कहे वो सत्य बात नहीं है उनके बाद वो सत्य कर सत्यम विधातुम निजभृत भाषतुम और प्रहलाद महाराज ने यह भी कहा था कि भगवान सभी जगह सभी जगह भगवान है तो भगवान कहीं से प्रकट हो सकते हैं इस बात को सत्य करने के लिए स्वीकार करें भगवान उस समय प्रकट हुए उस रूप और हुए तो स्वाभाविक इमीडिएट इनकार किया कि नृसिंह का वध कर दिया नहीं तो अन्य साधनों से ही भगवान वध कर सकते थे अथवा बार बार किया जा रहा था मारने का प्रयत्न किया और ज्यादा करता प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयत्न करता भगवान बिना प्रकट हुए तो रक्षा कर सकते थे कर लेते थे कई बार किए ही थे इस बार भी कर सकते थे लेकिन अब ईश्वर कह ही दिया कि हाँ इसमें ही है भगवान तो वहां पर मार रहा और पिलर टूटा उसमें से यदि नहीं होते भगवान नहीं प्रकट होते तो इमीडिएट हालांकि बात तो असत्य नहीं थी लेकिन लोक में प्रसिद्धि होती कि प्रहलाद महाराज झूठ बोले थे कहे थे कि पिलर में भगवान पिलर कहाँ निकले तो इस प्रहलाद महाराज का अपजस न हो असत्यवादी सिद्ध न हो इसलिए भगवान उनसे श्लोक है ना कैसे है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेश कैसे कौन ऐसा श्लोक है उसको कौन सा श्लोक
सत्रह श्लोक सत्रह सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम
अखिलेश चात्मना कौन सा श्लोक है?
सत्रह
सत्यम विधातुं निज भृत भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तत् भूतरूप मुद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानव। ठीक है, दूसरा कोई? डायरेक्ट इसी बात को क्या पद्म पुराण में उद्धव जी क्या कहते हैं? कहे कि भगवान हमको छोड़ कर मत जाइए, वो तो हम भी चाहते हैं कि छोड़ कर हमको कहे छोड़ कर मत जाइए, प्रार्थना की भगवान हमको छोड़ कर मत जाइए। तब नेक्स्ट का प्रश्न है,
लोक में इसे बताया कि
रूप में रहिए, छोड़कर मत जाइए, ये तो अच्छी बात है ना। मतलब को भगवान मान ने कहेंगे कि मैं चला जाऊंगा तो निराकार रूप से तो रहूंगा ही, तो उसी का ध्यान करना चाहते तो उन्होंने कहेगा ना वो अच्छा ही नहीं चाहिए, इसी रूप में रहिए। नहीं तो कहते ठीक है आप चले जाइए, निराकार तो हमारे पास रहेगा, संतुष्ट हो जाते ना, लेकिन वो नहीं रिस्क लेना चाहते। उद्धव जी ऐसा भुक्त भोगी थे, बड़ा बार उनका इनकाउंटर हुआ था। एक बार खुद आप दूसरे की बातें खुद किसी को बताने गए थे कि निराकार कहीं ध्यान करना चाहिए, बहुत बढ़िया रूप है, वो भी कह रहे होकर बड़ा मतलब की हानि ठोकर लौटे थे, वो कभी भूल नहीं कर सकते थे, कह देंगे कि मैंने निराकार ही बड़ा बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो चिन्मय है, वह तो सगुण का रूप है, वही है, तो कहते थे आप जाइए ना, हम निर्गुण रूप से तो है ही, तो रोक के वो रहे थे, रोक किसी ने रहे थे, उनके मन में लग रहा होगा ना कि जो भगवान का जो रूप है चिन्मय वो श्रेष्ठ है, इसलिए ना रोक रहे थे, चाहे शब्द की पकड़ से कुछ भी कह रहे हैं, वो कहते कि निर्गुण रूप श्रेष्ठ है, तो क्या रोकने की दबाए, आप जाइए निर्गुण रूप सभी जगह व्याप्ति है, यह उद्धव जी नहीं ना कहते, साफ कह रहे हैं कि रुकिए, नहीं तो भगवान तो कह ही रहे थे अगर मैं जा रहा हूँ मेरा ध्यान करना हो करना तो सुन रहे ठीक है व्यवस्था कर लूँ, ऐसा नहीं कर। तो यह जो भगवान का जो रूप
कृष्णेर यतेक खेला सर्वोत्तम नरलीला नरवो पितार, जो मूल भगवान है वो मनुष्य के रूप में है। जो वृंदावन में कृष्ण रहते हैं करीब 11 वर्ष की अवस्था के रहे, तो वही भगवान का एकदम ओरिजिनल रूप वही है। निराकार जो ब्रह्म है भगवान के शरीर से विशेषकर नख से, पैर के नख से जो ज्योति निकलती है, तो वही निराकार रूप सारे विश्व में कणकण में व्याप्त है। लेकिन उस निराकार रूप का आधार भगवान का सगुण रूप है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम ब्रह्म, जिसे निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहा जाता है, वह क्या है? भगवान के शरीर से एक प्रकाश निकलता है, वह प्रकाश मात्र है। सूर्य है तो सूर्य की किरणें निकलती हैं इस रूम में, जो प्रकाश है लाइट ऑफ कर देने के बाद ये प्रकाश यहाँ है, सूर्य की किरणें यहाँ। लेकिन इसके साथ सूर्य एक लोक है, यह किरण सूर्य से श्रेष्ठ नहीं है। तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है, वह भगवान के स्त्री विग्रह से श्रेष्ठ नहीं है। लाइट जल रहा है उससे किरणें निकल रही है, जिस दिन वह नष्ट हो गए किरणें, तो भगवान का निराकार स्वरूप भी है उस सर्व व्याप्त है। लेकिन उसका आधार जहाँ से ज्योति निकलती है भगवान का, वह दिव्य चिन्ह में श्री विग्रह है और वह श्रेष्ठ है। नहीं तो उद्धव जी क्यों उसको जब ठीक ही है तो निराकार ब्रह्म में तो है ही, जाया अथवा उसे जाना ना क्या उसमें है, क्यों कहते कि आप रहिए मैं भी साथ चलूंगा, उसमें साथ और क्या है, सभी जगह है। तो हम किरणों से तो नहीं प्रार्थना करते हैं कि किरण आपके साथ रहे, सूर्य कहीं जाए अथवा रहे, ऐसा आप नहीं करते हैं ना कि दीपक जो जल रहा है वो कहीं ले जाइए, हमको तो बैठे रहूंगा। वो श्रेष्ठ भगवान का, यह इस बात को भूल नहीं जाना चाहिए। भगवान का जो कृष्ण रजते को खेला सर्वोत्तम नरलीला नरको कुतार, भगवान का जो रूप है अन्य जगहों में बताया गया है कि मनुष्य की रचना बाइबिल में कहा गया है, इसकी रचना मनुष्य की रचना भगवान ने, भगवान का जैसा रूप था वैसा ही देख कर और मनुष्य का बनाया गया। तो मनुष्य को यदि दो हाथ है तो भगवान को दो हाथ, भगवान का जैसा रूप था प्रकृति बना रहे, ब्रह्मा जी बना रहे थे, आदमी को देखी भगवान का कैसा रूप है, तो ऐसा एक ये सब प्राणी की रचना की और मनुष्य जैसा हम लोगों का रूप है, 5 उंगलियां हैं इसमें, 9 हैं 2 हाथ हैं, तो मूल जो तत्व तो है भगवान है सर्वोसर्व यही उसका रूप है। अब उससे ज्योति निकलती है निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, चाहे लोकलाइज परमात्मा, वही परमात्मा अपने को एक्सपेंड करके सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं चतुर्भुज रूप से। जो द्विभुज कृष्ण है नंद बाबा के जो पुत्र के रूप में 11 वर्ष के लगभग उम्र के 11-15 नव यौवन कहा गया है। यौवन प्रारंभ होता है 15 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था तक। नौ जौवन मतलब कि जौवन का प्राप्त, ऐसा लगता है कि कल ही भगवान 15 वर्ष के हुए हैं, 16 वर्ष के हुए, नौ जौवन उसको कहा जाता है। 20 वर्ष को नौ जौवन नहीं कहा जाता है, वो पुराना जौवन हो गया है। लेकिन भगवान का ऐसा रूप है कि लगता है कि कल ही 16 वर्ष के हुए हैं, परसों दिन के नहीं, कल के 16 वर्ष इनका पूरा हुआ। भगवान कभी 17, 18, 19, 20 वर्ष नहीं होते ही नहीं। नौ जवन, जवन का पूर्व भाग 25 वर्ष के बाद जवन समाप्त होता है। नौ जवन मतलब कि 16 वर्ष, और अभी ऐसा नहीं कि 2 वर्ष पहले 16 वर्ष के लिए, तो लगता है कल 16 वर्ष में प्रवेश किया। तो वह भगवान का जो रूप है, इस पर एकदम कितना भी आप युक्ति करेंगे, इधर से घुमा फिरा कर उद्धव जी कहते हैं वो पहले बैठ, अब उद्धव ऐसा भूल कर सकते हैं? आप बताइए, जो उद्धव जी गए थे वो एक बार गोपियों को समझाने ही गए थे ना, वो वहां से बड़ा सफलतापूर्वक आए थे, कितना भारी हार हुई थी, कितना भारी मान ह्यूमिलिएशन के साथ बेचारे आए, तो फिर वही दोहराने लगेंगे कि आपका निराकार स्वरूप चिन्ह है और सगुण स्वरूप का है। इसी से भगवान
सगुण जिसको कहा जाता है, सगुण तो कहना पड़ता है, वो सब छोड़कर सीधे कृष्ण का जो जिसमें मयूर पक्ष धारण किए हुए हैं, हाथ में बंसी लिए हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं, आंखों का जैसा वर्णन है पीताम्बर धारण किए हैं, पैर में नूपुर पहने हुए हैं, वह रूप सबसे और वही भगवान का रूप मूल रूप ओरिजिनल रूप से वह
महाराज जाकर भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे और भगवान प्रहलाद महाराज को उठाकर उनके मस्तक पर अपना हस्तक कमल रखते हैं। उस श्लोक में लिखा गया है कि जैसे ही भगवान ने अपना हस्त कमल प्रहलाद महाराज के सर पर रखा तो प्रहलाद के सारे कलमश धुल गए, शुद्ध हो गए। और इसके पिछले अध्याय में जब नारद जी युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें नारद जी बताते हैं कि प्रहलाद बिल्कुल अकलमश थे और यहाँ लिखा कि कलमश धुल गए, तो उनमें तो कोई कलमश था ही नहीं।
हाँ, यह बार बार यह बात कही गई है, प्रहलादन तथेति सनकय राजन महाभागवतोर उपेत्य भूयिकायन ननाम तांजलि स्वपाद मूल्य परितम तमर्भकम दुर्लोक्य देव कृपया परिपूत उत्थाय तक्षिणता परम्भुजन काला ही विचित्र ध्यान कृत अभयम। कहाँ है स तत् कर स्पर्श धुत अखिल अशुभ। यहाँ पर नारद जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने उनके अपना हाथ उनके सिर पर रखा तो सभी अशुभों से प्रहलाद महाराज मुक्त हो गए, जितना उसमें कलमश था पाप था वह स्पर्श करते ही नष्ट हो गया। भगवान नृसिंह द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं पूर्णतया धूल गई, अतएव दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से प्रवृत्त हो उठा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। प्रश्न यह है कि जब प्रहलाद महाराज को जन्म से ही उन पर किसी प्रकार का पाप नहीं था, भगवान का भजन कर रहे थे, बार बार आया हुआ है, तो नारद जी की उन पर कृपा थी, वो भक्ति किए थे, तो जब उन्होंने प्रहलाद महाराज के सिर पर नृसिंहदेव ने हाथ धैर्य रखा तब उनके अशुभ नष्ट हो गए, इसका क्या तात्पर्य? उसमें तो था ही नहीं, उसमें तो अशुभ था ही नहीं, अजी था भी तो इतना स्टेज से गुजरे थे, तो यह कहने का क्या अर्थ है कि उनके अखिल अशुभ है धूल गए, सभी पाप से वो मुक्त हो गए, सभी तरह के दोषों से वो फ्री हो गए। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ था बचा हुआ, ऐसा लगता है ना, कुछ तो बचा हुआ, तभी ना भाई कहा जा रहा है कि और भागवतम की वाणी है। ऐसे आप लोग जानते होंगे, भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जहाँ भक्ति का वर्णन किया गया है तो बार बार यह कह करते उसकी भक्ति बढ़ गई, उसकी भक्ति बढ़ गई। वृंदावन में किसी पार्षद की वर्णन किया कि सिंध राधा रानी का वर्णन किया गया तो उनके अब प्रेम बढ़ गया, आंसू होने लगे। तो कभी घटता जैसे समुद्र है तो समुद्र में कभी कभी लहरें उठती हैं, लुटते देखे हैं ना, ऊंचा नीचा होता है, तो
कभी ऊंचा लहर जाता है, ऊंचा उठता है और कभी नीचा हो जाता है, तो इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि समुद्र में जब नीचा लहर गया तो पानी कम हो गया और जब उठा है तो पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ऐसे जो प्रेम में ऐसे कुछ तरंग होते हैं, तरंग समझते हैं ना, ये राधा रानी के प्रेम का वर्णन किया गया है तो कभी वो बड़े प्रेम से हैं, कभी यहाँ तक गुस्सा में है, तो तरंग है, उसमें घटने बढ़ने के अर्थ में नहीं है। इसी तरह जो भक्त भगवान के शरण में आते हैं तो एक बार ऐसी होती है कि संपूर्ण नष्ट हो जाता है, एकदम कंप्लीट नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी तरंगायित रहता है, कभी दिखता है कि बढ़ गया, कभी घट गया, कभी घट गया। तो जैसे मैंने प्रहलाद महाराज के में भक्ति कभी कभी देखा गया कि जैसे जैन उन्होंने प्रहलाद महाराज के सिर को उन्होंने हाथ रखा तो उनके आंखों से अष्टसात्विक विकार सब प्रकट होने लगे। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि ये सब वो प्रेम के उस धरातल पर नहीं थे, लेकिन फिर भी तरंगे हमेशा ऊंचा नीचा होती रहती है। तो उसी सेंस में कभी उस तरंगों को उनके आधिक्य को प्रदर्शित करना है तो उसी लिए कहा जाता है कि यह उन्हें बढ़ गया, अन्यथा कम नहीं हुआ था, कोई पाप था नहीं। लेकिन एक बार जब छुए भगवान तो उनके शरीर में रसज रोमांच सा बिजली सा कौन आई, तो उसी सेंस में वह कहा जाता है एक उच्चतर श्रेणी। एक स्थिति ऐसी होती है जो धीरे धीरे किसी का होता भी है, जैसे आप जानते होंगे नारद जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि जब पहले बार बार वर्णन किया गया है कि उन्होंने भक्ति किया, भक्ति से उनका पूरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और एक बार वो जाकर ध्यान कर रहे थे भगवान का ध्यान कर रहे थे तो भगवान का मूर्ति एक सर उनके हृदय से ओझल हो गई, देखना बंद कर रहे थे, नारद प्रयत्न करने लगे मैं देख सकूँ। तो भगवान ने आकाशवाणी रूप से कहा कि नारद मुझे बहुत खेद है कि इस जन्म में तुम मुझे पुनः नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैं कुयोगियों के लिए जिनके कलमश पूरे पूरे नष्ट नहीं हुए हैं उनको मैं दृश्य नहीं होता। मैं भगवान ने कहा, भगवान की वाणी पढ़े ना प्रथम अध्याय प्रथम स्कंध पढ़ना ही। तो एक स्थिति वह थी उनके लिए, यह बात सत्य है कि भाई भगवान के राज्य में उच्चतर प्रेम में जो प्रवेश करता है तो एक बात एकदम शुद्ध होना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज के विषय में वह लिटरली उसमें नहीं, इसमें केवल तरंग के रूप में कि ऐसा लगा कि उनकी भक्ति उनका बढ़ गया और भगवान की तो लगा कि एकदम सब पापों से धुल धुल गए, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है कि वो अब तक उनमें कोई भौतिक कलमश था। रूपा जी इसी के तात्पर्य में लिखे हैं भगवद गीता का स्तर, माम ही पार्थ व्यापारित्य ये पी ने सॉरी माम चयो अभी अव्य विचारेण भक्ति योगे ने सेवते सगुणान संप्रत्यन ब्रह्म भूयाय कल। जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है वो सभी गुणों से अतीत हो जाता है। जो भक्त तो प्रहलाद महाराज तो इस लेवल के बहुत ऊंचा के भक्त, भगवान का दर्शन किए थे, क्या क्या बार बार भगवान की रक्षी के, तो उन्हें किसी प्रकार का कलमश था नहीं, लेकिन फिर भी ये जैसे प्रेम तरंगायित होता है ऊपर नीचे जाता है, वैसे भक्त में कुछ भावनाएं भी तरंगायित होती हैं। ठीक है, दूसरा कोई है?
दोनों एक ही तरह के हैं, एक बंदर के तरह होते हैं,
उनको किन्नर
किन्नर कहते हैं, बंदर हनुमान जी हठात पता नहीं लगता है कि बंदर है कि आदमी है, तो होते हैं उनका लोक भी है नर
किम पुरुष तो अलग बंदर जैसे नहीं है, किम नर का बंदर जैसा थोड़ा
लेकिन किम पुरुष वो अलग थोड़े होंगे,
थोड़ा भेद होता है। आप देखे वन मानुष देखे हैं कैसी जीव में, कहीं वन मानुष देखे हैं कि नहीं? आप लोग जीव में नहीं देखे हैं कैसे देखे हैं?
आदिवासियों में,
आदिवासी
नहीं, जो आदिवासी तो आदमी होते हैं ना, तो देखे ही आदमी तरह जू में होते हैं
बंदर,
बंदर तो लंगूर अलग बंदर।
हाँ, लंगूर ही लंगूर जैसा होते हैं वो, एकदम मने मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, बहुत हाथ ऐसे धोते हैं, केला खाते हैं कैसे छील कर खाते हैं, एकदम ऐसा होता है। वो भी मनुष्य जैसा दिखते हैं और बंदर भी मनुष्य जैसा दिखता है, वो बिल्कुल काले होते हैं। तो थोड़े जातियां हैं, मैंने भी वहां कभी यात्रा नहीं किया लेकिन कोई देखते हठात लगता है कि मनुष्य है, लेकिन भिन्न भिन्न तरह के बंदर को भी देखकर मुंह देखने पर लगता है कि तो मनुष्य जैसा है। और वो जो लंगूर कहते हैं चाहे बनमानुख, आप लोग जू नहीं है पर यहाँ पर नहीं देखे हैं,
चिड़िया घर
नहीं देखे हैं कहीं, एकदम मनुष्य जैसा उनका व्यवहार है।
गोरिल्ला,
गोरिल्ला
चलते हैं दो ही पैर से चलेंगे, केवल बुद्धि को छोड़कर और बहुत सी चीजें हम मनुष्य जैसा होता है, लेकिन वो एकदम काले होते हैं, लंबे होते हैं। और एक बंदर का मुंह भी देखने को कभी आप हठात लगता है कि इसके बच्चे का तो मुंह नहीं, तो थोड़ा सा वो भेद है बिंद के कुछ कर लो करो। ठीक है तो यहाँ समाप्त करते हैं, बस करने
आते संडे को।
ठीक है, तम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की
जय,
श्री प्रोटोकॉल की
जय।